जयनिलो प्रेमादन करुणा प्रचुर जयनिलो प्रेमादन करुणा प्रचुर प्रभु कोथा गेला वैष्णव ठाकुर प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर एना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर
प्रेमा करुणा प्रति
ડાકો
वासुदेवाय
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीले तं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। नमोम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुर्भ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे त्रायस्व मम केशवलोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति अग्रे करुणा मत पांडवानां दुशासनेना हृतवस्त्रकेशं कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। युन्तः प्रविश्य मम वा च मिमां प्रसूप्तां संजीवयत्र किल सातिदरस्वधाम्ना। अन्यासहस्रचरणा श्रवणात्वगादे प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिमेषयन्तम् वटास्य पत्रासपुटे सयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्मृति दिव्यस्तवे वेदै सांग पद क्रमोपनिषदि गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है, हार्दिक स्वागत इस प्रातः श्रीमद् भागवत सत्र के जगह पे। आज भक्त भागवत की चर्चा होगी। हम डेली ग्रंथ भागवत को सुनते हैं। दो प्रकार के भागवत है, एक है ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्त भागवत। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है एक्चुअली। भक्त भागवत की भी कथा कहेंगे तो भगवान की कथा उसमें आ जाती है, और भगवान की कथा कहेंगे तो उसमें निश्चित रूप से भक्त की कथा आती है। तो आज हम श्रीमद् भागवत के जगह पे भक्त भागवत अर्थात पितामह भीष्म के बारे में आज हम श्रवण करेंगे, क्योंकि पितामह भीष्म, आज भीष्माष्टमी है, पितामह भीष्म देव, भीष्म पितामह जी आज के दिन पे शरीर का त्याग किए थे अपने, आज के दिन पे, तो बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। जैसे कि हम तो जानते हैं कि जो वैष्णव का आविर्भाव और तिरभाव, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि उनका जो तिरभाव तिथि है, उनका तिरभाव होना मतलब वो भगवान के धाम पहुंच गए, तो वो भी एक खुशी उल्लास का दिवस है। लेकिन फिर भी तिरभाव तिथि को वैष्णवगण मनाते इसलिए भी है क्योंकि एक वैष्णव जो है आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में छोड़कर चले गए हमको, इसलिए इस दुख को निश्चित रूप से सारे वैष्णव इसको सहते हैं। तो पितामह भीष्म का जो कि आज त्रिभाव तिथि है, और पितामह भीष्म भगवान के एक अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त है, 12 महाजनों में से एक महाजन है। एक्चुअली में ये जो कथा है महाभारत के अंतर्गत, वैसे तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में इस कथा का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, एक अध्याय में, पूरे प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में, लेकिन और भी डिटेल महाभारत में वर्णन है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को किसको सुनाया? परीक्षित महाराज को। जैसे सुखदेव गोस्वामी भागवत को परीक्षित महाराज को सुनाया, उसी प्रकार ये जो महाभारत है इसको बैसन पायन मुनि ने जन्मेजय को सुनाया। जन्मेजय कौन है? परीक्षित महाराज के पुत्र। परीक्षित महाराज ने जब राजपाट का त्याग किया, अपने पुत्र को स्थापित किया, है ना, तो उस पुत्र को बैसन पायन मुनि, जो कि व्यास देव के ही पुत्र है, उन्होंने इस महाभारत को ना, तो इस भीष्म पितामह का जो तिरभाव के बारे में बहुत सुंदर रूप से डिटेल वर्णन महाभारत के अंतर्गत आता है, जहां पे वैसन पायन मुनि जन्मेजय को कथा सुनाते हुए कहते हैं, बहुत डिटेल वर्णन करते हैं। तो तिरुभाव तिथि जो है वैष्णव का, ये तिरुभाव और आविर्भाव में कोई अंतर नहीं होता है। तो आज के दिन पे पितामह भीष्म, क्योंकि पितामह भीष्म को इंतजार था आज का दिन, आज का जो दिन और समय मुहूर्त था वो इंतजार था पितामह भीष्म को। आज माघ महीना के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के ऊपर, अष्टमी तिथि के दिन पितामह भीष्म ने अपने शरीर को त्याग किया। पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे, या तो महाभारत के युद्ध जब प्रारंभ हुआ जिस दिन से, 58 डेज, 58वां दिन पितामह भीष्म ने अपने शरीर को त्याग किया। क्या सहन शक्ति रहा होगा पितामह भीष्म का? पितामह भीष्म का जो शरीर जो आज के दिन छोड़े, वो दिन 58वां दिन था, 58, 58वां दिन उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया। इस समय इस मुहूर्त ये युद्ध का प्रारंभ पहले दिन से लेकर जोड़ा जाए तो पहले दिन से युद्ध 18 दिन चला, युद्ध के बाद भी 40 दिन तक वो सरसैया पे थे। पहले दिन से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि आचार्य गण कहते हैं कि पहले दिन से जो युद्ध चल रहा था उस समय भी हर एक सैनिकों को तीर और ये सारे चीजें लगता ही था, ऐसा नहीं कि चोट नहीं लगता था, तो इसलिए पहले दिन से ही गिना जा रहा है। तो 10वें दिन पितामह भीष्म जो कि सरसैया पे लेटे और 8 दिन तक युद्ध चला, और युद्ध के पश्चात और 40 दिन तक पितामह भीष्म सरसैया पे लेटे, उसके बाद उन्होंने आज के दिन पे शरीर त्याग किया। तो बहुत बहुत ही सहनशीलता था भीष्म पितामह के अंदर, वैसे भी क्षत्रिय थे और क्षत्रिय के साथ साथ वो भगवान के एक महान भक्त थे। एक्चुअली ये जो सहनशीलता है ना, एक भगवत भक्त जो होता है ना, उसी के अंदर ज्यादा हो सकता है, अन्य लोग सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको आभूषण माना गया। चैतन्य महापुरुष कहते हैं त्रिनादपि सुने चेना तरोरपि सहि सुना, ये वैष्णव का आभूषण है। भागवत में बताया गया तितिक्षवा करुणिका स्वहृदम सर्वदेहिनाम, ये सारे आभूषण है वैष्णव के। इस सहन शक्ति जो है ना, जिसको आभूषण वैष्णव का बताया गया है, ये केवल एक भगवत भक्त ही इसको सह सकता है। तो पितामह भीष्म जो कि एक महान भागवत महाजन थे, 12 महाजनों में से एक महाजन पितामह भीष्म, है ना, 12 महाजनों में से एक महाजन है। इस बात का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवतम के षष्ठम स्कंद में जहाँ पे यमराज जी स्वयं वर्णन करते हैं, यमराज जी भी एक महाजन है, वो स्वयं वर्णन करते हैं। किनको वर्णन करते हैं? यमदूतों को वर्णन करते हैं। वो यमदूत जिनको विष्णु दूतों ने भगा दिया था, कहाँ से भगाया था? अजामिल प्रसंग में, जहाँ पे विष्णु दूतों ने भगा दिया था, यहाँ पे तुम्हारा कोई जगह नहीं है, चलो भाग जाओ, बहुत धिक्कारते हुए उनको भगाया था। और उस कष्ट को लेकर ना वो यमराज जी के पास जाते हैं, क्या धर्म है ये सारे चीजें, प्रश्न पे प्रश्न पे प्रश्न पूछते हैं यमराज जी से। उस समय यमराज जी उस भागवत धर्म, धर्म क्या है, अधर्म कौन लोग जानते हैं, इसका वर्णन करते हुए वहां पे षष्ठम स्कंद में यमराज जी स्वयं बताते हैं कहते हैं कि स्वयंभो नारद शंभो कुमार कपिलो मुनि प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर वयम् द्वादशैते बिजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यम ज्ञात्वा मृत्नमश्नुते। यमराज जी बताते हैं कि 12 महाजन हैं, कौन कौन? स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद अर्थात नारद मुनि, और शंभु अर्थात शिव जी, और कुमार अर्थात चार कुमार, चतुर कुमार, कपिलो कपिल मुनि जो कि देवहूति के पुत्र, और मनु स्वयंभू मनु, और प्रहलाद महाराज, और जनक महाराज, और भीष्म पितामह, ये 12 महाजन, और बलि महाराज, और स्वयं वैयासकी अर्थात व्यास देव, और स्वयं मतलब यमराज जी का स्वयं मैं, ते 12 जो महाजन है। तो भीष्म पितामह और ये बताते हैं कि अगर इन महाजनों के पदचिन्हों पर अगर चलते हैं हम, तभी ये जो भागवत धर्म हमको समझ में आ सकता है, भक्ति क्या है, कृष्ण के ये जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है। जब तक महाजने एन गतः सर्वंथा, जब तक इन महाजनों के चरण चिन्हों के ऊपर हम नहीं चलेंगे, तब तक हम इस भागवत धर्म को नहीं समझ सकते हैं, यमराज जी यहाँ पे बताते हैं। तो विष्णु पितामह जो कि एक 12 महाजनों में से एक महाजन है, और परम शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण के, और अटूट प्रेम था कृष्ण के साथ विष्णु पितामह का। तो आइए हम विष्णु पितामह के उस मृत्यु सैया पर लेटे हुए विष्णु पितामह किस प्रकार से भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो प्रसंग इस प्रकार से है, थोड़ा सा प्रसंग को जानते हैं। वैसे पिछले शायद मैं क्लास में इन प्रसंगों का थोड़ा सा वर्णन किया था कि पितामह भीष्म उस समय की बात है कि जब ये महाभारत का युद्ध का नौवां दिवस खत्म हुआ, और उस दिन दुर्योधन के एक बहुत बड़ी टेंशन शुरू हुआ दुर्योधन को कि युद्ध का 9 दिन खत्म हो चुका, अभी तक कोई भी मारा नहीं गया। और टेंशन इसलिए हुआ क्योंकि भीष्म द्रोणस्य कर्णस्य कृपणस्य बड़े बड़े तीर तिमंगल हमारे पक्ष में, दुर्योधन सोच रहा है ना हमारे पक्ष में इतने बड़े बड़े महान योद्धा हैं लेकिन फिर भी 9 दिन का युद्ध समाप्त हो गया, कोई भी नहीं मारे गए। तो उस 9वें दिन के युद्ध समाप्ति के पश्चात दुर्योधन भीष्म पितामह के शिविर में जाता है। क्यों भीष्म पितामह के शिविर में जाता है? क्योंकि भीष्म पितामह उस समय कौरवों के सेनापति थे, इसलिए पितामह भीष्म के पास दुर्योधन गया, और दुर्योधन जाकर पितामह भीष्म को बोलने लगा कि पितामह मैं जानता हूं कि आप इन सारे पांडवों को मारने में सक्षम हो, लेकिन फिर भी 9 दिन युद्ध समाप्त हो गया। मैं देख रहा हूं युद्ध 9 दिन समाप्त हो गया लेकिन कोई अभी तक मारे नहीं गए, कोई भी नहीं मारे गए अभी तक। आप निश्चित रूप से पांडवों का पक्ष ले रहे हो, आप पक्षपात कर रहे हो, पांडवों का पक्ष ले रहे हो, आप युद्ध तो कर रहे हो दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से वो करुणा वो दया जो है पांडवों के प्रति आप दिखा रहे हो, आप हमारे पक्ष के सेनापति हो, आप इस प्रकार का नहीं कर सकते पितामह। आप नमक इतना महाभारत में वर्णन है कि आप नमक हरामी, जिसका नमक खाते हो उसी को, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो आप। इस प्रकार से बहुत सारे अपशब्द कहने लगा भीष्म पितामह को दुर्योधन, और उस समय पितामह भीष्म को कैसे क्षत्रिय को कैसे सहन हो सकता है, पितामह भीष्म को ये सहन नहीं हुआ। तुरंत ही भीष्म पितामह अपने शिविर में खड़े हुए और बोले कि युवराज बस करो, अभी एक शब्द आगे मत बोलना, मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं, तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं पक्षपात कर रहा हूं तो जाओ, मैं अभी प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल के युद्ध में निश्चित रूप से पांडवों में से किसी न किसी एक को मार दूंगा मैं। और तुरंत भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं और बोले कि तुम टेंशन ले रहा है ना, तुम टेंशन भी मत लो, जाओ तुम अपनी पत्नी को आज मेरे पास भेज दो और मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे देता हूँ और तुम्हारी भी मृत्यु नहीं होगी। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौर निताय की, जय श्री राधा माधव की। तो उस समय पितामह भीष्म दुर्योधन के बोलते हैं कि तुम भी टेंशन मत लो, अखंड सौभाग्यवती का तुम्हारी पत्नी को वरदान देता हूँ, तुम भी नहीं मरोगे, भेज देना अपनी पत्नी को। इस प्रकार आवेश में आकर पितामह भीष्म बोले कि मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं। तो जैसे ये रात्रि का समय था, दुर्योधन रात्रि के समय में पितामह भीष्म के शिविर में गया था, नवे दिन का युद्ध समाप्त होने के बाद। अभी क्या हुआ, जैसे ही रात्रि के समय में इस प्रकार से भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा और कृष्ण को जब ये प्रतिज्ञा पता चला, कृष्ण को कैसे पता चला, वेदाहम समतीतानि, वो तो सारे लोग के हृदय में बैठे हुए हैं, कैसे नहीं पता चलेगा। जैसे ही कृष्ण को पता चला, कृष्ण की निद्रा उड़ गई, पितामह ने प्रतिज्ञा लिया और भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लिए उसका पालन नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे भी क्षत्रिय कभी प्रतिज्ञा लेते तो उसको प्रतिज्ञा में अटल रहते हैं, वो करके ही छोड़ते हैं। तो कृष्ण को टेंशन हुआ, तुरंत ही पांडव के शिविर में गए और पांडव को जगाए, रात्रि का 12 बज रहा है, पांडव के शिविर में जाकर जगाए कि उठो उठो पांडवगढ़, उठो अर्जुन, उठो भीम, उठो। अरे तो तुरंत ही सब लोग उठे हड़बड़ा के, क्या हुआ क्या हो गया। अरे बोले क्या हो नहीं गया, उधर तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ले लिया, तुम में से किसी को सुबह मार डालेगा एक लोग को। तो उस समय पांडवगढ़ एकदम, उस समय युधिष्ठिर महाराज, महाभारत में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से कृष्ण को बोलने लगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ब्रह्मा जी की सृष्टि में हजारों लाखों अनंत कोटि जीव गण है, उसमें से एक कोई खत्म हो जाएगा कल, तो क्या फर्क पड़ता है, कल का कल देखेंगे, कृष्ण आप भी जाइए हमको भी सोने दीजिए, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल टेंशन ही, मृत्यु का विचार करे कि अगर कोई हमको ऐसा खबर लेके आए कि हमारी मृत्यु कल होने वाली है तो हमारा हमको रात को नींद आएगा नहीं आएगा, उथल पुथल चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिंदास कल मृत्यु होने वाली है, पांच में से एक का, कृष्ण ने खबर दे दिया, उसके बाद भी पांडवगढ़ बिंदास हुए, बोले कि जाइए हमको सोने दीजिए। और कृष्ण को आज कृष्ण टेंशन में, भगवान दो भक्त के बीच में आज फंस गए, उधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया हैं? और इधर अर्जुन, इन लोग को कोई टेंशन ही नहीं, और इतना तक कह दिया कृष्ण जाइए आप, हाँ ये टेंशन आपका है, हमने तो आपकी शरणागति को स्वीकार कर लिया है, आपकी शरणागति को हमने स्वीकार कर लिया है और ये टेंशन आपका है, अगर आपको, आपको तो हमने इसलिए लिया ना कि हम टेंशन मुक्त रहेंगे हमेशा, नहीं तो हम आपकी सेना को च्वाइस करते ना, पहला तो च्वाइस हमको ही दिया था ना, तो हम सेना को च्वाइस करते, आपको च्वाइस करने का यही तो बात था कि हमको टेंशन फ्री रहना है। बोला कि जाइए ये टेंशन आपका है, हमको सोने दीजिए, हम कल का कल देखेंगे। जाते जाते तो अर्जुन कह ही दिया कि जाइए टेंशन आपका है, अगर हम में से कोई कल मारा गया ना तो कल टाइम्स ऑफ इंडिया में आएगा कि कृष्ण के भक्त थे और मारे गए, ये टेंशन आपका है, आपका नाम आपकी बदनामी से होने से बचना है आपको ना, तो आप टेंशन लीजिए, आप कुछ करिए। और तो वास्तव में कृष्ण बहुत सोचने लगे, क्योंकि अभी अभी यहां तो बिंदास हो गए। देखिए संसार में, इस भौतिक संसार में भी लोग टेंशन में है, दिन भर गधे की तरह मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और दिन भर मेहनत करके काम करके घर पे थके हुए आते हैं, ऐसा लगता है कि पूरे संसार का बोझा उन्हीं के ऊपर है, एक पत्नी दो बच्चों का पालन पोषण करने के लोग इतने टेंशन में रहते हैं। यही टेंशन देखिए, मरने मृत्यु कल होने वाली है करके ये टेंशन पांडवों को भी जब ये न्यूज पता चला तो उनको टेंशन नहीं हुआ, अंतर केवल इतना ही है, उनको टेंशन इसलिए नहीं था क्योंकि शरणागति स्वीकार किए थे, अवश्य रचिए कृष्ण विश्वास पालन। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे आचार्य लोग व्याख्या भी करते हैं इस अवश्य रचिए कृष्ण विश्वास पालन के ऊपर, बट हम वहां पे नहीं जाएंगे। तो अभी यहाँ पे प्रतिज्ञा, उस समय पितामह भगवान कृष्ण प्लान किए, जैसा कि प्लान करके वो द्रौपदी को उठाए, द्रौपदी को उठाकर और द्रौपदी को भेजे पितामह भीष्म के शिविर में, और द्रौपदी चलो पितामह भीष्म के पास जाओ और उनको प्रणाम करके आओ। हाँ, बहुत लंबी कथा है लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो उस समय द्रौपदी जाती है, पितामह भीष्म को प्रणाम करती है, और प्रणाम करते ही, क्योंकि योग साधना में ब्रह्म मुहूर्त का समय था, पितामह भीष्म योग साधना में बैठे हुए थे, और उसी समय द्रौपदी जाकर उनको प्रणाम करती है, और प्रणाम करने के पश्चात उस योग साधना में बैठे बैठे भीष्म पितामह को ये आभास हुआ कि कोई आया हुआ है, और उनको यह स्मरण हुआ कि दुर्योधन का मैंने बोला था उसकी तुम्हारी पत्नी को भेज देना। हाँ, इसलिए आंख योग साधना में बैठे बैठे उन्होंने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी को, और फिर आंखें खोली तो देखे द्रौपदी सामने, और उस समय भगवान कृष्ण तुरंत पितामह भीष्म को तुरंत मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ये और किसी का नहीं, ये कृष्ण केशव का ही कार्य हो सकता है। तुरंत ही पितामह भीष्म खड़े होकर तुरंत अपने शिविर से बाहर निकले तो कृष्ण खड़े थे, और कृष्ण खड़े होकर चिढ़ा रहे हैं, अब बोलो पितामह भीष्म। उस समय द्रौपदी के उन चप्पलों को लेकर खड़े हुए थे, दबा के खड़े हुए थे ऐसा कि बोलिए पितामह भीष्म अब क्या करोगे, कौन सी प्रतिज्ञा की रक्षा करोगे, अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करोगे, यहाँ पे अखंड सौभाग्यवती की वरदान दिया इसकी रक्षा करोगे, एकदम चिढ़ाते हुए बोल रहे थे, जैसे हमारे नंद दुलाल कुनाई को किसी को पीछे पड़ते हैं ना, कैसे चिढ़ाते हैं, एकदम वैसे ही चिढ़ाते हुए। तो उस समय पितामह इन लोग, ये अटूट संबंध था पितामह भीष्म के साथ कृष्ण का। उस समय पितामह भीष्म भी उसी आवेश में आकर बोले, तुम कृष्ण बोल रहे थे ना बार बार जब देखो तब प्रतिज्ञा ले लेते हो, तब किसी को कभी भी वचन दे देते हो, अब बताओ कौन सी प्रतिज्ञा की रक्षा करोगे, कौन से वचन का रक्षा करोगे। तो उस समय पितामह बोल रहे प्रतिज्ञा की बात करते हो तो एक और प्रतिज्ञा लेता हूँ, कल के युद्ध में मैं आप मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा वो सब छोड़ो, लेकिन कल के युद्ध में मैं तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है ना उसको तोड़वा दूंगा। अभी महाभारत का 10वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ, 10वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ और उस समय घमासान युद्ध हुआ। आज पितामह भीष्म का जो रंग था ना वो महाभारत में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, क्या भीष्म पितामह, आज उनका रथ की गति और उनका युद्ध करने का जो गति था ना, आज उसके पीछे सब लोग फेल हो चुके थे। भीष्म पितामह इस तीव्र गति से, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि आज मैं पांडवों में से एक को मारूंगा, और उन्होंने लक्ष्य किसको बनाया, अर्जुन को बनाया लक्ष्य, आज अर्जुन को मैं मार दूंगा, और इतनी तीव्र गति से वो युद्ध कर रहे थे अर्जुन के साथ कि आज अर्जुन पूरे महाभारत का 18 दिन का युद्ध जो चला उस 18 दिन में कभी भी अर्जुन को पसीने नहीं आए थे, आज भीष्म पितामह के साथ युद्ध करते समय अर्जुन को पसीने आ गए, पसीने तक लखपत होने लगा, यहां तक कि भीष्म पितामह के युद्ध करने का जो गति था ना इतना तीव्र था कि अर्जुन अपने बाणों को निकालते ही वो बाण को फेंक देता था, वो निकाल भी नहीं पाता। अभी सोचिए कि गांडीवधारी अर्जुन, वो भी धनुर्धर है, ऐसे धनुर्धारी अर्जुन भी आज भीष्म पितामह के आगे विवश हो रहे हैं, आज कोई काम नहीं करा सकते, और पूर्ण आवेश में होकर पितामह भीष्म लगातार अर्जुन के ऊपर वार किए जा रहे हैं। लेकिन जब देख कृष्ण ने जब देखा कि अब तो अर्जुन बचने वाला नहीं है, आज ये बूढ़ा छोड़ने वाला नहीं अर्जुन को, बिल्कुल बचने वाला, इसलिए कृष्ण ने, अभी अर्जुन भी उनका शरणागत, कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा करने के लिए, महाभारत में वर्णन है कि कृष्ण अर्जुन की रक्षा करने, अपने भक्त की रक्षा, अपने भक्त के प्राणों की रक्षा करने के लिए, अर्जुन की रक्षा करने के लिए आज भगवान कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा और पितामह भीष्म अपना दूसरा जो भक्त है भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए आज भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ डाला। भगवान ने क्या वचन दिया था कि वह युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तुरंत ही भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। कभी कहते हैं ना, प्रबल भक्त के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान कृष्ण दोनों भक्तों के, एक की प्रतिज्ञा और दूसरे के प्राण की रक्षा करने के लिए भगवान अपने स्तर से नीचे गिरे, नीचे उतर गए, वो जो वचन दिए थे उसको तोड़ डाले। तुरंत ही भगवान ने रथ के ऊपर से कूद पड़े, रथ के ऊपर से कूद कर उन्होंने देखा कि एक रथ का चक्का पड़ा हुआ है, तुरंत ही उस रथ के चक्कों को उठा लिया और उठाकर भगवान भीष्म पितामह के आगे तोड़ पड़े। उस समय भीष्म पितामह की, क्योंकि अर्जुन की रक्षा कर रहे थे, उस समय भीष्म पितामह का बाणों की जो गति था चलाने का ना, वो रुक नहीं रहा था। और वर्णन है महाभारत युद्ध में कि कृष्ण आगे आए तो कृष्ण के इस सीने पे बाण जा जाके लगते थे, उनके कवच टूट गए और खून की धारा बहने लगी। पितामह भीष्म बाणों पर बाण चलाए जा रहे हैं और उस समय आवेश में आकर कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा करने के, अभी अर्जुन भी कूद गया रथ के नीचे और कृष्ण का पैर पकड़ लिया, कृष्ण के चरण को पकड़ लिया, कृष्ण आप अपने वचन को मत तोड़िए, मेरे प्राण चले जाए लेकिन आप वचन को मत तोड़िए, आप छोड़ दीजिए शस्त्र को, आप मत छोड़िए, अपने वचन को मत तोड़िए। उधर अर्जुन खींच रहा है, इधर भगवान कृष्ण तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं पितामह भीष्म, और उधर पितामह भीष्म बाण पे बाण मारे जा रहे हैं, कृष्ण के छाती को भेदते जा रहा है बाण। उस समय भगवान कृष्ण एकदम आवेश में होकर जब पितामह भीष्म के नजदीक पहुंच गए, बस मारने वाले थे, वर्णन है कि जिस प्रकार से एक सिंह हाथी के मस्तक के ऊपर वार करता है, पितामह भीष्म भी कोई कम नहीं थे, एक सिंह हाथी के मस्तक के ऊपर वार करता है, वही दृश्य उस समय भगवान कृष्ण वार करने ही वाले थे, उसी समय तुरंत ही अपने बाणों को, अपने धनुष को तुरंत ही भीष्म पितामह नीचे छोड़ दिए और खड़े हो गए ऐसे। बस केशव, बस इसी दिन का मुझे इंतजार था, कब तुम मेरे सामने आओगे और मुझे मारोगे, इसी दिन का इंतजार था। तुरंत ही अपने बाणों को छोड़ दिया उन्होंने, त्याग दिया और तुरंत, और उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, अर्जुन अब देख क्या रहा है, चलाओ बाण। उस समय एक एक करके अर्जुन बाणों के द्वारा मार मार के जैसे कि सबको पता है किस प्रकार से छलनी कर दिया पूरा शरीर को, ऐसा शरीर में ऐसा कोई जगह नहीं बचा था जहां पे बाण नहीं लगे हों। उस सर सैया को देखिए, बाण की सैया जब जब धराशाही होकर इस दसवें दिन पितामह भीष्म जब गिरे तो उनका धड़ जो है शरीर के ऊपर नहीं गिरा, धरती के ऊपर नहीं गिरा, बाणों के ऊपर ही टंग गया, इतने बाण चलाए थे अर्जुन ने। तो उस समय लेकिन सारे जैसे ही पितामह भीष्म, अभी सोचिए कि एक हस्तिनापुर का एक महान बड़ा व्यक्तित्व आज महाभारत के इस युद्ध स्थल में गिर पड़ा, तो सब लोग तुरंत ही युद्ध बंद हुआ तुरंत ही सब लोग भागकर पितामह भीष्म के पास आए कि आज पितामह भीष्म धराशाही हो गए। तुरंत सब लोग, अर्जुन भी अपने बाण को छोड़ दिया और जाकर सब लोग भीष्म पितामह के पास खड़े हो गए। लेकिन उस समय भीष्म पितामह ने बोला कि युद्ध बंद करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई रुकने की जरूरत नहीं, युद्ध को चालू रखो। क्यों? क्योंकि मैं कि उस समय भीष्म पितामह बताते कि मैं कौन से दिन मृत्यु को पाऊंगा, वो अपनी मृत्यु का दिन तय कर देते उसी समय, मैं इस दिन अपने प्राण को त्यागूंगा तब मेरे पास आना, अभी युद्ध करो जाओ। उस समय पितामह भीष्म ऐलान कर देते हैं। उसके बाद फिर से 8 दिन तक युद्ध चला और पांडव लोग विजयी हुए और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को शोक हो गया। विजयी तो हो गए लेकिन शोक यह हो गया कि ये सारे जितने भी लोग मारे गए मेरे कारण मारे गए, इस मैं राजभोग की चक्कर में सारे लोग, इतने सारे लोग मारे गए, इतनी महिलाएं विधवा हो चुकी, तो ये सारा शोक जो है युधिष्ठिर महाराज को हो गया। 18वें दिन के बाद विजयी होने के बाद ये शोक युधिष्ठिर महाराज को हुआ। जिस प्रकार से अर्जुन को शोक हुआ महाभारत के युद्ध के समय और भगवान ने उस शोक को दूर किया, उसी प्रकार से युधिष्ठिर को शोक को दूर करने के लिए बड़े बड़े ऋषि आए। सुध गोसाई पाद वर्णन करते भागवत में कि बड़े बड़े ऋषि आए क्योंकि ऋषियों को टेंशन हो चुका था। क्यों टेंशन हुआ था? कि जो राजा है उसको शोकाकुल नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज युद्ध जीत चुके हैं और चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, तो एक राजा को शोक में होना बहुत ही घातक है। इस टेंशन में सारे ऋषिगण वहां पे आए, उस युधिष्ठिर महाराज को शोक को दूर करने लगे लेकिन शोक दूर नहीं हो पाया। यहां तक कि सुध गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं शोक को दूर किए उनके, लेकिन फिर भी उनका शोक दूर नहीं हुआ। क्यों नहीं दूर हुआ? तो आचार्य गण कहते हैं कृष्णेर अद्भुत कर्मणा, ये कुछ और नहीं, ये कृष्ण का ये अद्भुत कर्म है, अद्भुत कर्म, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर का शोक दूर नहीं हो, नहीं तो कृष्ण किसके शोक को दूर नहीं कर सकते हैं। उधर अर्जुन शोकित हुआ तो दूर किए उनको गीता सुनाकर, लेकिन यहाँ पे कृष्ण समझाए लेकिन फिर भी शोक दूर नहीं हुआ। आचार्य गण लिखते केवल और कुछ नहीं है, कृष्ण का अद्भुत करण। कृष्ण स्वयं चाहते थे कि इनका शोक दूर नहीं हो, क्योंकि एक क्रेडिट शोक दूर करने का जो क्रेडिट है किसको देना चाहते हैं, पितामह भीष्म को देना चाहते हैं। तो उस समय सारे लोग युधिष्ठिर महाराज अपनी प्रजा के साथ, अभी वो समय आ गया, कृष्ण याद दिलाते हैं कि अभी वो समय आ चुका जब भीष्म पितामह अपने शरीर को छोड़ेंगे, तो वो समय आ गया। इसलिए सारे जो प्रजा, सारे प्रजा को युधिष्ठिर, हालांकि युधिष्ठिर महाराज शोकाग्रस्त थे लेकिन फिर भी वो एक राजा का वेश धारण किए और अपने प्रजा के साथ मिलकर वो कुरुक्षेत्र के भूमि स्थल में जहां पे पितामह भीष्म सरसैया पे लेटे हुए थे वहां पे जाने लगे। क्यों शोकाकुल है और वहां पे भीष्म पितामह धराशाही पड़े हुए हैं, फिर भी एक राजा के वेश में क्यों गए युधिष्ठिर महाराज? क्यों? क्योंकि केवल एकमात्र भीष्म पितामह की संतुष्टि के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज शोक ग्रस्त होते हुए भी भीष्म पितामह की प्रसन्नता के लिए अपने पूरे प्रजा के साथ मिलकर वो अभी जा रहे हैं भीष्म पितामह के पास ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और जैसे ही ये खबर पता चला कि अभी भीष्म देव अपने शरीर को त्यागने वाले हैं और बहुत सुंदर उपदेश देने वाले हैं, ज्ञान को देने वाले, कथा कहने वाले हैं, तो केवल यही केवल युधिष्ठिर महाराज उनकी प्रजा ही नहीं, बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पे एकत्रित होने लगे और भगवान कृष्ण स्वयं सारे युधिष्ठिर महाराज भीम नकुल सहदेव को लेकर एक साथ निकले और पूरी प्रजा को लेकर, और यहां तक कि क्योंकि भीष्म पितामह ने मृत्यु का डेट तय किया हुआ था, इसलिए युधिष्ठिर महाराज पूरा जो अंत्येष्टि क्रिया का जितना सामग्री है ना सब कुछ लेकर जा रहे हैं, सब कुछ सामग्री भी साथ में लेकर जा रहे हैं। और कृष्ण तुरंत अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मैं रथ निकालता हूं और रथ के ऊपर तुम और मैं चलेंगे। अकेले कृष्ण, वही दृश्य जो महाभारत के युद्ध स्थल में कृष्ण फिर से सारथी बने अर्जुन के और अर्जुन को रथ पे बैठाया और लेकर जाने लगे विषामा भीष्म। क्यों? क्योंकि उनके साथ में भी जा सकते थे युधिष्ठिर महाराज के, लेकिन ये जो दृश्य था ना, ये दर्शन, ये भीष्म पितामह को बहुत पसंद था। कौन सा? कृष्ण सार पार्थ सारथी रूप कृष्ण का ये भीष्म पितामह को बहुत पसंद था, इसलिए फिर से सारथी बने भीष्म की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान और अर्जुन को लेकर उस युद्ध स्थल में पहुंचे। और वहां के केवल यही लोग नहीं गए, इनकी ही प्रजा नहीं गई, युधिष्ठिर महाराज ही नहीं गए, और भी जैसे ही पता चला कि अभी भीष्म पितामह जी ज्ञान देने वाले, कथा करने वाले, तुरंत ही वहां पे सारे और भी अन्य ऋषि मुनि एकत्रित हो गए। शुद्ध गोसाई बात कहते हैं कि कौन कौन लोग एकत्रित हुए, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदशो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुत वशिष्ठ इंद्र प्रमाद श्रितो गृहृत समोषित काच्छिवान गौतमोस्ति च कौशिकोथ सुदर्शन। इतने सारे ऋषि, पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य ऋषि और भगवान बादा स्वयं व्यास देव जी और बृहदस्य ऋषि, भरद्वाज ऋषि और सशिष्यो, ये केवल ऋषि केवल अकेले नहीं गए, अपने जितने भी हजार हजार शिष्य थे उनके जितने भी शिष्य ना सशिष्य रेणुकासुत, और स्वयं रेणुकासुत मतलब स्वयं परशुराम जी, तो सारे लोग एक साथ में वहां पे युद्ध भूमि उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पितामह भीष्म से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वहां पे पहुंचने लगे। देह को छोड़ने वाले हैं पितामह भीष्म, इसलिए वहां पे सब लोग पहुंचे और सशिष्यो रेणुकासुत और स्वयं परशुराम जी, जो परशुराम कौन है, भीष्म पितामह के गुरु है परशुराम जी। और एक गुरु आज अपने शिष्य का प्रवचन सुनने के लिए जा रहा है, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज इस रेणुकासुत के ऊपर बोलते हैं कि गुरु तो थे ही परशुराम जी, भीष्म पितामह के गुरु थे, लेकिन एक आश्चर्य करने वाली बात यह कि उनके सबसे बड़े दुश्मन भी थे। बहुत बड़ा युद्ध हुआ था गुरु शिष्य के बीच में, पर बहुत बड़ा युद्ध, भयंकर युद्ध हुआ था, इसलिए दोनों एक बहुत बड़े दुश्मन भी थे। तो वहां पे महाराज बताते बहुत सुंदर दृष्ट व्याख्यान देते हैं महाराज कि देखिए दुश्मन कभी कभी हो सकता है कि भक्तों के बीच में आपस में मत कलह हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई भक्त व्यास आसन पर बैठकर या फिर भगवान की कथाओं को कहने जब जा रहा है ना, वहां पे दुश्मनी और ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी हमको भागवत कथा हुआ तो इन्विटेशन तो दिया नहीं है? तो यहाँ पे महाराज बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करते हैं कि भागवत कथा सुनने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए, कथा को श्रवण करने के लिए किसी भी इन्विटेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए और कोई भी दुश्मनी भी ये सारी चीजें भी नहीं रखना चाहिए, हमको कथा को सुनना चाहिए जाकर। तो देखिए दुश्मनी होते भी इस समय रेणुकासुत आज भीष्म पितामह के द्वारा कहे गए ज्ञान को सुनने के लिए आज वहां पे आ गए। तो सारे ऋषि मुनि अपने शिष्यों सहित, स्वयं युधिष्ठिर महाराज अपनी प्रजा सहित, भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर सारे लोग भीष्म पितामह के चारों बाजू खड़े हो चुके। तो उस समय तो इस प्रकार से सारे जैसे ही सब लोग एकत्रित हो गए, उस समय बहुत सुंदर तरीके से भीष्म पितामह स्वागत करते हैं। ये प्रश्न उठता है कि स्वागत कैसे किए, वो तो सरसैया पे लेटे हुए थे, कैसे स्वागत किए? तो वर्णन करते सुध गोस्वामी कि अपने वाणी से उनका स्वागत करें किए। देखिए वाणी एक ऐसी चीज है ना, व्यक्ति को नीचे भी गिरा सकता है, व्यक्ति को बहुत ऊपर उठा सकता है। एक ऐसी चीज है वाणी, बहुत मजा। तो बहुत सुंदर मधुर शब्दों में उनका स्वागत किया सारे लोग का भीष्म पितामह ने। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक घर में भक्तों को बुलाया प्रसाद के लिए, बहुत सुंदर से भक्तों को प्रसाद खिलाया, और लीजिए हाँ, बहुत सुंदर पकवान बनाया, बहुत सुंदर तरीके से सर्व किया, बहुत अच्छे बातचीत किया, और अंत में जाते जाते और हाथ जोड़ के वो व्यक्ति अगर बोलता है कि बहुत सुंदर आप लोगों ने बहुत, हमने जो खिलाया सब कुछ ग्रहण कर लिया, हाँ आप लोग नहीं खाते तो मुझे सारे चीजें कुत्तों को खिलाना पड़ता है। बताइए अभी तक सारा सेवा किया, एक शब्द बोलने मात्र से सब खत्म। तो वाणी के द्वारा भीष्म पितामह ने उन सारे लोगों का स्वागत किया। तो बहुत सुंदर तरीके से उपदेश दिया वहां पे, बहुत सुंदर वर्णन है भागवत में कि उसमें पितामह भीष्म में दान धर्म, तप धर्म, स्त्री धर्म और दान धर्म, राज धर्म, इस सारे का बहुत सुंदर तरीके से युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दिया। युधिष्ठिर महाराज को शोक हुआ था ना, जिसको दूर करने के लिए भगवान ने उनके पास लेकर आए थे, तो इस सारे चीजों को बहुत सुंदर तरीके से भीष्म पितामह ने उस सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ये सब ज्ञान दिए और इतने सारे लोग श्रोतागण उनको सुन रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये सारे ये भी बताया पितामह भीष्म कि तुम लोग के जीवन में जो कष्ट आया ना पांडवों के जीवन में, हे वत्स युधिष्ठिर तुम लोग के जीवन में जो कष्ट आया ना, एक्चुअली एक कष्ट तुम जो सोच रहे हो ना, तुम सोच के बैठे हो कि मेरे कर्मों के द्वारा हुआ है, या तो मैंने क्या पाप किया है ऐसा जिसके कारण इस प्रकार का इतने सारे लोग मेरे कारण मारे गए, तो तुम्हारे कारण नहीं मारे गए, ये तो केवल एकमात्र भगवान की इच्छा से सब हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ। तुम कोई, क्योंकि मैं तुमको जानता हूं, तुमको ना तो पितृ दोष लगा हुआ है, ना तो मातृ दोष लगा है, ना तो गुरु दोष लगा है, क्योंकि मैं तुम सारे तुम्हारे माता को भी जानता हूं, तुम्हारे पिता को भी जानता हूं, तुम्हारे गुरु को भी जानता हूं, और तुम लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार रखा उस चीज को भी जानता हूं, इसलिए सारे किसी भी प्रकार का तुमको दोष नहीं है। और तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आया केवल एकमात्र भगवान कृष्ण की इच्छा, भगवान की इच्छा से हुआ, इस बात को प्रस्तुतिकरण करते हैं। और अंत में भगवान की इच्छा से हुआ, तो भगवान कौन है इस बात को भी इसमें पितामह बताते हैं। और इस बात को बताते हैं पितामह भीष्म, बहुत सुंदर है ज्ञान है, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो उस समय भगवान कौन है इस बात को भी पितामह भीष्म उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सरसैया पर लेते हुए इस बात को भी बताते हैं। कहते हैं कि इस वे भगवान साक्षात, और वो भगवान कौन है जो कि तुम लोग को उनकी इच्छा से तुम लोग को कष्ट आया, कौन भगवान है? तो कहते हैं इस वे भगवान, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना इधर केशव, यही भगवान है। इस वे भगवान साक्षात, यही साक्षात भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण कौन है साक्षात, इंगित करते हुए पितामह वहां पे बताते हैं, भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान सब दे लिए पितामह भीष्मा। तो ज्ञान देने के पश्चात जैसे ही उन्होंने ये बोला कि ए शिवाय भगवान साक्षात, जैसे ही कृष्ण को इंगित किया, उस समय भीष्म पितामह की जो दृष्टि थी वो टिक गई कृष्ण के ऊपर। अभी तक तो बहुत सारे लोग को संबोधित करते हुए ज्ञान दे रहे थे, लेकिन जब भगवान को इंगित किया ए शिवाय भगवान साक्षात, उस समय उनकी दृष्टि कृष्ण के ऊपर टिक गई और उस समय कृष्ण को सामने बुलाया, इधर आओ, सामने खड़े रहो। मानो कृष्ण कहते कब तक खड़ा रहो ऐसा। तो उस समय भीष्म पितामह कहते हैं जब तक मैं अपने शरीर को छोड़ नहीं रहा हूं तब तक तुम सामने खड़े रहो। तो इस प्रकार से जय कृष्ण को सामने बुलाकर उनके ऊपर दृष्टि लगाकर पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर स्तुति किया। मृदंग करताल को ना थोड़ा स्तुति को गाते हैं, बहुत सुंदर स्तुति किया। तो आज भीष्म पितामह जो अंत समय में भगवान कृष्ण के ऊपर दृष्टि करते हुए देते हुए उन स्तुतियों को जो गाया है, वैसे तो स्तुति बहुत ही विस्तार रूप से इसका वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, लेकिन हम थोड़ा सा इसको गाते हैं और संक्षिप्त रूप से में हम थोड़ा इसका श्रवण करेंगे। तो चलिए देखिए मैं गा पाता हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक प्रयास करते हैं गाने के लिए भीष्म स्तुति को। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर राज्य प्रलंभ नाम नवमोध्यायः श्री भीष्म वाच। ध्यान से सुनेंगे ना तो गा लेंगे। चलो श्री भीष्म वाच इति मति रूपकल्पिता वितिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोवने भगवती सात्वत पुंगवे विभोवने सुखमुपगते क्वचित् विहर तुम प्रकृतिमुपेयुष्याद्भव प्रवा क्वचित् विहर तुम प्रकृतिमुपेयुष्याद्भव प्रवा। सब लोग साथ में गाते हैं, साथ में गाते हैं, टाइम बहुत लगेगा।
त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलावृतांननाब्जम विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युतितुरगरजो विदुम्न विश्व कचुलित समावार्यलं कृतास्ये मम निशितसरे विविद्यमाना त्वचि बिलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्यमाते निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवती पार्थ सखेरति ममास्तु व्यवहित पृथना मुखं निरक्षं स्वजनवधाद्विमुखाश्यदो शबोध्या तुमति महरदात्मवेत्तयाय चरणगति परमास्यत श्यमेस्तो स्वनिगममपाय मत्प्रतिज्ञा मृतदितकर्तुमवाप्लुतो तथास्ता धृतरथ चरणो भयाचलद्गो हरिवहन्तु मे भाङ्गतो तरीया कहतो विशीर्ण दंस छतज परिप्लुत आतता इनो में असब मिससात मत्तदार्थम सभवतु मे भगवान गते मुकुंद विजय रथ कुटुम आत्तोत्रे धृतहय रश्मिनितात्रे क्षणीये भगवती रतिरास्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्षहता गता स्वरूपं ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनु कृतवत् उन्मदांध प्रकृति मगन किल यास्य गो पवाद्व निगण निपव संकुलेन्त सदसि युधिष्ठिर राजसु यरेषा अरहणमुपपे इच्छणीयो मम दृष्टि गोचर एष आ वीरात्मा तमि मम महजं शरीरभाजं हृदिष्ठितमात्मकल्पिताना प्रतिदृशमिव नैक धार्ममेकं समदित्योदोऽस्मि विभूतवे नमोह इति मतिरुपकल्पिता विदृशिना भगवति सात्वत पुङ्गवे विभोग्ने सुखमुपगते त्वचित्पि अरतुं प्रकृतिमुपेयुषि याद्भव प्रभा प्रकृतिमुपेयुषि याद्भव प्रभा प्रकृतिमुपेयुषि याद्भव प्रभा।
मृत्यु के समय भीष्म पितामह भगवान कृष्ण ऐश वय भगवान साक्षात जैसे ही भगवान कृष्ण के ऊपर दृष्टि जब पितामह भीष्म को कहा था इन स्थितियों का बहुत सुंदर स्थिति है। भगवान कृष्ण को याद करते हुए उनकी लीलाओं को याद करते हुए पितामह भीष्म इन स्थितियों को गाते हैं। तो दस पंद्रह मिनट तो पितामह भीष्म वैसे तो इसकी व्याख्या बहुत है लेकिन संक्षिप्त में एक दो श्लोकों को हम से टच करते हैं। तो पितामह भीष्म जो कि अंत समय में वह भगवान कृष्ण का ये स्तुति को कर रहे हैं और स्तुति को गाते हुए वह प्रथम श्लोक में प्रथम स्तुति में वो कहते हैं प्राण त्यागते समय हे कृष्ण इस मृत्यु का आज का जो दिन है जिस दिन मैं अपने प्राण को त्याग करूंगा। प्राण को त्याग करते समय क्योंकि आज जो मैं प्राण को त्याग करूंगा ये पितामह भीष्म क्यों बोल पा रहे थे क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था इसलिए तो इतने दिन तक वो पड़े थे एक दिन का इंतजार कर रहे थे। इच्छा में तो उनके पिता के द्वारा इस भीषण जो प्रतिज्ञा उन्होंने लिया उसके कारण वो खुश होकर वो कथा लंबी है उधर नहीं जाएंगे बट पिता के आशीर्वाद था इच्छा मृत्यु का और इस इच्छा मृत्यु वरदान को पितामह भीष्म ने सही जगह पे इस्तेमाल किया वैसे एक भक्त जो होता है ना वो चीजों को सही इस्तेमाल करना एक भक्त ही जानता है कब किस चीज को इस्तेमाल करना चाहिए। तो पितामह भीष्म को जो वरदान था इच्छा मृत्यु का इसको उन्होंने सही समय सही काल का इंतजार करते हुए उस इच्छा मृत्यु के वरदान को लागू किया। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि हे कृष्ण मैं अपने शरीर अपने प्राण को त्यागने जा रहा हूं तो मैं अंतिम समय में, मेरा जो ये अंतिम समय है, इन अंतिम समय में एक मुझे बहुत बड़ी चिंता सता रही है। अभी क्या चिंता है, अंतिम समय में क्या चिंता है? कृष्ण सामने खड़े हैं, विष्णु पितामह को क्या चिंता होगी अंतिम समय? तो विष्णु पितामह कहते हैं कि एक मेरी कन्या है जो कि कुवारी रह गई है, जिसका विवाह मैं आपसे कराना चाहता हूँ। प्रश्न उठा विष्णु ब्रह्मचारी है, फिर भी उनकी कन्या कहां से आ गई? तो पितामह भीष्म कहते हैं, मानो कृष्ण पूछते हैं कि तुम्हारा भीष्म पितामह तुम्हारी कन्या, आज तक तो सुना नहीं था, मैं पहली बार सुन रहा हूं कि तुम्हारी कौन सी कन्या हो गई, कौन सी कुवारी कन्या बच गई। तो मानो कृष्ण ऐसा पूछते हैं, तो पितामह भीष्म बोलते हैं कि ये उस कन्या की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कौन सी कन्या की बात कर रहा हूं? इति मति रूप कल्पिता त्रिष्ण, इति मति, ये जो मति मेरी बुद्धि रूपी जो कन्या है, इसकी बात मैं कर रहा हूं कृष्ण। इस बुद्धि रूपी ये जो मति है ना, इसको मैं आपसे इसका विवाह कराना चाहता हूं। इस मति का, इस बुद्धि रूपी कन्या का मैं आपसे विवाह कराना चाहता हूं। तो मानो कृष्ण पूछते हैं, अच्छा ठीक है, आप अपनी कन्या को मुझे मुझसे विवाह कराना चाहता हो, तुम्हारे कन्या में कुछ गुण है कि नहीं, है ना? कृष्ण भी पूछे तो क्या पूछे, तुम्हारी कन्या में क्या कुछ गुण है क्या? जैसे कि हम सबको अभी, हम भी कृष्ण के शरणागत जाना चाह रहे हैं, कृष्ण से विवाह करना चाह रहे हैं ना, हम भी, हम रोज तप साधना क्यों कर रहे हैं कृष्ण के साथ विवाह करने के लिए, है ना? कृष्ण को शरणागति प्राप्त करने के लिए हम रोज इतने तप साधना कर रहे हैं ना। तो कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम्हारी कन्या में गुण है ऐसे जो कि मेरे साथ शादी करने के योग्य है? वो गुण को पूछ रहे हैं कृष्ण, अर्थात एक भगवत भक्त के अंदर क्या गुण, आचार्य गण बताते हैं इस प्रसंग पे कि भगवत भक्त के अंदर क्या गुण होना चाहिए। जब तक गुणों को अर्जित नहीं कर लेगा एक भक्त, तब तक कृष्ण के साथ उसका विवाह नहीं हो सकता है। और वो गुण क्या है? तितिच्छव करुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषणा, ये सारे गुण है, ये सारे साधु के लक्षण। और ये सारे गुणों को जब अर्जित करेंगे तब जाके कृष्ण के साथ हमारा मति रूपी जो कन्या है कृष्ण के साथ विवाह होगा, आचार्य गण बताते हैं। तो कृष्ण कहते हैं क्या गुण है तुम्हारी इस कन्या में, थोड़ा मुझे वो भी बताओ कि मेरे साथ शादी कराने के लिए तुम चल रहे हो, क्या गुण है तुम्हारी कन्या के साथ, इस मति रूपी तुम्हारी बुद्धि क्या गुण है? तब कहते हैं पितामह भीष्म कि वितृष्णा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। वितृष्णा मतलब ये जो हमारी बुद्धि है ना कृष्ण, ये अभी सारी तृष्णाओं से मुक्त हो चुकी है, इसमें कोई अभी क्लेश नहीं बच गया है, मुक्त हो चुकी है वितृष्णा। भोग त्याग, ये सारी चीजों से, इंद्रियां, जो इंद्रियां जैसे कि हाथ है तो स्पर्श चाहता है, आंख है वो रूप चाहता है, कान अच्छा सुनना चाहता है, है ना? ये सारी जो तृष्णा है ना, शरीर का जो वांटिंग है ना, उससे मैं अभी मुक्त हो चुकी, मेरी बुद्धि जो है मुक्त हो चुकी है, इसलिए मेरी इस बुद्धि रूपी कन्या का मैं आपके साथ विवाह कराना चाहता हूँ। एक गुण है पितामह भीष्म बता रहे, एक गुण है मेरी कन्या के अंदर कि वो सारी वितृष्णा, सारी तृष्णाओं से वो मुक्त हो चुकी है। तो कृष्ण बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हारी कन्या गुणवती भी है, मतलब सारी तृष्णाओं से मुक्त हो चुकी है, तो तुम जिसके साथ तुम्हारी कन्या को विवाह कराना चाहते हो उसको तुम जानते हो? मान लो कृष्ण पूछते हैं, तुम इस गुणवती, इस गुण रूपी कन्या को मेरे साथ विवाह कराना चाहते हो, अर्थात तुम्हारे दामाद के विषय में तुम जानते हो? तब कहते हैं पितामह भीष्म कि हाँ प्रभु, मैं जानता हूं। क्या भगवती सात्वत पुंगवे विभूगने, आप साक्षात भगवान हो, आपके विषय में मैं जानता हूं। भगवती सात्वत पुंगवे विभूगने, तो बहुत लंबी व्याख्या है इसकी। तो ये पितामह भीष्म बोल रहे हैं कि हमारी जो बुद्धि रूपी है जो कन्या है, वो सारी तृष्णाओं से मुक्त हो चुकी है, जो कि मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। और कृष्ण पूछते हैं कि क्या तुम मेरे विषय में जानते हो? तो वो भी बताते हैं पितामह भीष्म कि हाँ, मैं आपके विषय में जानता हूँ, आप भगवान, भगवती सात्वती पुंगवे विभुग्नी। तो मान लीजिए अभी आगे कवितामा भीष्म कहते हैं कि भगवती सात्वती पुंगवे विभुवनी, और क्या कहते हैं, स्वसुख मुपगते क्वचित विहरतो प्रकृति मुपेश यत भव प्रवाह। कहते हैं कि आप साक्षात भगवान हैं, और जो कि स्वसुख लीला करने के लिए, अपने लीला विहार करने के लिए स्वसुख मुपगते प्रकृति मुपेयुषी यद भव, और इस प्रकृति को चलायमान करने के लिए प्रभु आप यहाँ पे प्रकट हुए हैं। आप स्वयं भगवान, मान लीजिए भगवान कहें कि भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, यहाँ पे कैसे आए, तो उस समय पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रकृति को चलायमान करने के लिए, अपनी लीला को स्वयं सुखी होने के लिए और लीला करने के लिए इधर प्रकट हुए है प्रभु, इसलिए ये मेरी मति रूपी जो कन्या है मैं आपको देना चाहता हूँ। तो कृष्ण सोचने लगे कि बातें तो बहुत, पितामह भीष्म बहुत बड़ी बातें कर रहा है, तो तुम्हारी बेटी गुणवान भी है, गुणवान, तुम्हारे बेटी में गुण भी है और तुम अपने दामाद के विषय में भी जानता है, लेकिन तुमने क्या तुम्हारी बेटी को पूछा तुम्हारी बेटी मुझे पसंद करती है, तुम्हारी बुद्धि रूपी जो कन्या है उसको पूछा क्या कि मुझे पसंद करती कि नहीं करती, आखिर में उसको तो मेरे साथ में रहना है, क्या वो पसंद करती है कि नहीं मुझे। तो उस समय पितामह भीष्म अगले श्लोक में कहते हैं, अगले स्तुति में कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमलवरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलतकुला वृतम ननाब्जम विजय सखेरतिरास्तु मे नवद्या। प्रभु आप पूछ रहे हैं क्या मेरी कन्या आपको पसंद करती, प्रभु आपको कौन नहीं पसंद करता है, इस त्रिभुवन के सारे लोग आपको पसंद करते हैं, इस त्रिभुवन में आपके जैसा सुंदर कोई है ही नहीं प्रभु, इस त्रिभुवन में आपके जैसा कोई सुंदर नहीं है, इसलिए आपको कौन नहीं पसंद करा, मेरी बुद्धि को तो छोड़ो, मेरी कन्या को तो छोड़ो, लेकिन इस त्रिभुवन में तीनों लोग, त्रिभुवन 14 लोकों में आपको कौन नहीं पसंद करता है। कवि लिखते हैं ना, इस संसार में सबसे सुंदर जो है श्याम सुंदर, बाकी सबसे सुंदर परम पूज्य राधाबेन महाराज बताते हैं, संसार में केवल एकमात्र सुंदर है तो वह है हमारे श्याम सुंदर, बाकी सबसे सुंदर है। क्या कृष्ण की सुंदरता क्या है, बाकी हमारी क्या सुंदरता है प्रभु, कौन नहीं चाहेगा आपका, त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कि आपको प्राप्त करने की कामना नहीं करता होगा, कौन ऐसा होगा, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आपके तमाल वृक्ष की तरह आपकी जो रंग है वो तमाल वृक्ष की तरह है, और त्रिभुवन के सारे लोग आपको प्राप्त करने की कामना करते हैं। प्रश्न उठ सकता है कि त्रिभुवन में कहां संसार के लोग, इधर पितामह भीष्म बताते हैं कि सब लोग संसार के त्रिभुवन 14 लोकों में सब लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि संसार में कितने लोग कृष्ण को मानते ही नहीं है, ये प्रश्न उठ सकता है, लेकिन पितामह भीष्म आचार्य जब वहां पे टीका लिखते हुए कहते हैं कि त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन के सब लोग पसंद करते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से, पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेकिन सब लोग पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण देते हैं वहां पे आचार्यगण, उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि जिससे हम इस संसार में किसी से बहुत प्रेम करते हैं, मान लीजिए एक पुत्र है अपनी माता से बहुत प्रेम करता है, या एक प्रेमी अपने प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है, जिससे हम इस संसार में बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु होगी उसकी, और उस समय घर के अंदर वो बाड़ी पड़ा हुआ है, और कोई आके बोले कि तुम इससे बहुत प्रेम करते हो ना, उसको इधर ही रहने दो, वो रखेगा, इतना प्रेम करता था लेकिन आज उसको रखने के लिए तैयार नहीं होगा, क्यों नहीं तैयार होगा, क्योंकि उसमें से परमात्मा भगवान निकल चुके हैं उसमें से, तो अभी प्रेम किससे करता था, क्या वो शरीर से करता था, हालांकि उसको एक ज्ञान पता नहीं है शरीर और आत्मा का ज्ञान, इसलिए उसमें फंसा हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली वो प्रेम परमात्मा से कर रहा था, जो कि आज निकल गए, और वो जिससे इतना प्रेम करता था आज उसको फेंकने के लिए तैयार है। तो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, लोग कृष्ण से प्रेम तो करते ही है। तो इस प्रकार से तमाल वर्णम और रविकर, ये जो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का रवि मतलब सूर्य, कर मतलब किरणें,
और रवि करण, जब ये सूर्य का प्रकाश आपके पीतांबर के ऊपर गिरता है ना प्रभु, उसके जो किरण है ना, बहुत क्या सुस्वाद सुशोभ लगता है। पितामह भीष्म ये करते हैं, और उसके बाद तीसरे श्लोक में वो कहते हैं, श्लोक नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा से लीला एक है उसमें बता देता हूँ, खत्म करते हैं। इस प्रकार से भीष्म पितामह भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हुए कहते हैं कि युद्ध तिरुगरजो विदुम्न विश्वक, कि पितामह भीष्म की अभी आंखें जो है जो कृष्ण के ऊपर टिकी हुई है और उनकी सुंदरता का वर्णन कर रही है, और कहते हैं कि प्रभु जब आप ना जब अपने भक्त की जब सेवा में लग जाते हैं ना, तब तो आप और भी बहुत सुंदर लगते हैं। युद्ध तुर गरजो विदुम्न विश्वक, कि जब आप अपने भक्त की जब सेवा करते हैं ना, तो आप तो आपकी सुंदरता अति बढ़ जाती है उस समय। जैसे कि वर्णन करते हैं कि प्रभु आचार्यगण इस जगह पे लिखते हैं कि वास्तव में इसमें पितामह जो कह रहे हैं ना कि जब आप भक्त की सेवा में लगते हैं तो आपकी सुंदरता बढ़ जाती है। आचार्यगण करते हैं कि इसी प्रकार भक्त अगर कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, कृष्ण के लिए मेहनत करता है, तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए कृष्ण और एग्जाम्पल देते हैं आचार्यगण, क्या कि वहां पे एक स्त्री का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक गृहिणी है अपने घर के अंदर सुबह 4 बजे उठती है वो और खाना पकाती है, बच्चे को उठाती है, बच्चे को तैयार करती है, स्कूल के लिए तैयार करते है, तब तक पति उठता है, पति की सेवा करती है, पति को ब्रेकफास्ट खिलाती है इत्यादि इत्यादि सब कुछ, पति को ऑफिस के लिए तैयार करती है, पति को ऑफिस भेजती है, तब तक सास ससुर कुछ बोलते हैं, पूरा दिन एक स्त्री बिजी रहती है और उस बिजी उस व्यस्तता में उसके शरीर से पसीने निकल जाते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि ऐसी स्त्री जो अपने घर का काम, गृहिणी घर का काम करने में इस प्रकार का मेहनत करती है, ऐसी स्त्री का जो सुंदरता है ना ब्यूटी पार्लर में से ताजा ताजा निकल के आने वाली स्त्री के साथ कर ही नहीं सकते हैं। उस स्त्री की सुंदरता जो गृहिणी में काम करने वाली उसकी बहुत ही ज्यादा है, आचार्यगण बताते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सेवा करता है ना भगवान कृष्ण के लिए, सेवा जब करता है ना उसकी सुंदरता बढ़ जाती है सेवा। तो यही बात को पितामह भीष्म कह रहे हैं, पितामह भीष्म कह रहे हैं कि जब आप अपने भक्त की जब सेवा करते हैं ना, जब आप अर्जुन की सेवा कर रहे थे ना, क्या प्रभु आपकी क्या सुंदरता थी, उसका वर्णन इस श्लोक में पितामह भीष्म कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जब आप अपने इस भक्त की रक्षा करने के लिए, इस भक्त को के साथ में सेवा कर रहे थे, तो उनके रथ को जब हाँक रहे थे अर्जुन के, तो उस समय इतना तीव्र गति से हाँक रहे थे प्रभु आप, तेजी से जो चल रहा था आप तीव्रता से हाँक रहे थे, और उस समय अर्जुन भी बहुत तीव्रता से अपने धनुष बाण को लेकर लोग युद्ध कर रहा था, और उसकी इतना तीव्रता थी कि वो लेफ्ट चलो राइट चलो मुंह से नहीं बोल पाता था, इतना समय नहीं था, वो अपने पैरों से प्रभु आपको पीछे से मारता था, इधर मारता था मतलब लेफ्ट चलना है, इधर मारता था तो राइट चलना है। प्रभु ऐसे ऐसे भक्त की जब आप सेवा करते हैं ना, तो आपकी सुंदरता देखने लायक है प्रभु। ऐसी सुंदरता जब ही घोड़े को आप तीव्र उस रथ को जब युद्ध क्षेत्र में आप भगाते थे उस रथ को, तो इतना तीव्र गति था उसका ना कि उस युद्ध क्षेत्र के जो धूलि था ना, वो धूलि उड़कर पूरा आपके पूरा शरीर के ऊपर बैठ जाता था, इतना तीव्र गति से आप घोड़ों को हाँक रहे थे, तो घोड़ों के पैर से जो उठा हुआ धूलि है ना कृष्ण के शरीर के ऊपर बैठ जाता था। ये उसी प्रकार का दिखता था जैसे कि आटे का मिल होता है ना, है ना, आटे का मिल होता था, आटा पीसने गेहूं पीसने वाला व्यक्ति उसके अंदर खड़ा रहता है, तो क्या दिखता है उसका पूरा शरीर भर आटा ही आटा दिखता है, और दो ही चीज दिखता है, एक उसका होंठ दिखता है क्योंकि जीवा को घुमाता रहता है ना तो आटा को खाता रहता है, इसलिए वो ये होंठ दिखता है, और दूसरा ये पलक के ऊपर ये बाल होने के नाते आंखें दिखती रहती है। तो प्रभु ऐसी सुंदरता आपका उस युद्ध क्षेत्र युद्ध स्थल पे था, जब धूल उड़ते थे ना आपके शरीर पे बैठ जाते थे ना, तो और धूल बैठने के बाद जब आपके इस दिव्य शरीर से जब पसीने निकलते थे, तो पसीने जो है ना हीरे के समान चमकते थे, जब पसीने का बूंद जो है ना उस पाउडर के साथ मिलता था ना, तो आप हीरे के समान चमकता था प्रभु, और उसमें भी आपकी जो अलके थी, आपकी जो अलके थी वो अलके जब ही आपके मुख कमल पे आ जाती थी ना, आप बहुत सुंदर तरीके से जब उसको ऊपर करते थे, तो क्या सुंदर दिखते थे प्रभु, क्या सुंदरता जब आप अपने भक्त की सेवा में लगे थे, क्या सुंदरता थी।
है ना, देखते है ना लोग बाल को इधर रखते हैं और ऐसा ऐसा घुमाते रहते हैं, ऐसा ऐसा घुमाते, विशेष करके स्त्रियां आजकल का फैशन है, तो आजकल का फैशन है ना, ये फैशन भी कृष्ण से आया हुआ है। तो बहुत सुंदर उस बालों का वर्णन करते हैं भीष्म पितामह, क्या कल ना? वो अलके, क्या अलके थी प्रभु, घुंघराले बाल, ये ऐसे घुंघराले बाल है वेस्ट इंडीज वालों की तरह, एकदम तार तार जैसा बना रहता है, मच्छर भी अगर फंस गया तो गलती से कहां आ गया सोचेगा, निकल नहीं पाएगा, ऐसे बाल नहीं, घुंघराले बाल, एकदम सॉफ्ट बाल, और ऐसे घुंघराले बाल जब आपके मुख कमल पे जब गिरते थे, तब जब आप उस बालों को ऊपर करते थे प्रभु, क्या सुंदरता था वो, क्या सुंदरता था। वास्तव में ये फैशन है। एक मुझे सत्य घटना याद आ गया, जयपुर मंदिर का जब इनोग्रेशन था तो उसमें मैं सेवा के लिए गया हुआ था, तो उस समय कई दिन था मैं वहां पे सेवा में, तो यूथ लड़कों को मेरे साथ में दिया गया था सेवा के लिए, प्रसादम की सेवा था, तो उसमें एक यूथ लड़का था जिसका पहले यूथ था, एक महीना हुआ था उसकी शादी हुए, एक ही महीना हुआ था, 20-25 दिन ही हुआ था, और सेवा में बहुत अच्छा सेवा करता था, लेकिन बहुत परेशान रहता था वो, और बार बार इस बात को व्यक्त करता रहता था, प्रभु जी मैं बहुत परेशान हूँ, शादी करके फंस गया फंस गया फंस गया, और ये रोज रोज बोलता था एक्चुअली। तो एक दिन प्रभु जी आप कुछ बताइए, सच में मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बोला कि अभी शादी करके एक महीना भी नहीं हुआ, परेशान हो गया था तो शादी क्यों किया। तो बोल रहा था कि प्रभु क्या करूँ, मैं बहुत सुंदर जिंदगी जी रहा था, बहुत सुंदर तरीके से यूथ लड़कों के साथ था, और यहाँ पर सब कुछ अटेंड करता था, लेकिन क्या हुआ मैं फंस गया प्रभु। और जब मैं उस लड़की को देखा ना, उसकी अलके जो देखा ना, अलके के ऊपर फिरा हो गया मैं। तो मैंने बोला कि तुमको अलके पसंद आई तो अलके काट के आ गया होता ना, पूरा गोडाउन क्यों उठा ले गया। तो ओ, मैं ये प्रसंग पढ़ रहा था, सीन मुझे याद आ गया एक्चुअली। तो भीष्म पितामह यही सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि धूल से भरा हुआ आपका शरीर और उसके ऊपर बूंदे जो गिर रही थी वो चमक रही थी, और उसमें भी आपकी जो अलके थी, और इतना सुंदर दिखता प्रभु। ये सुंदरता तो केवल ये भीष्म पितामह ने ही देखा, भीष्म ने ही केवल ये सुंदरता को देखा, ये सुंदरता अर्जुन भी नहीं देखा, भले से ही आपका मित्र हो। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा था, अर्जुन तो आपके पीछे खड़ा था। अर्जुन को पूछिए आपको पीठ के अलावा उसने क्या देखा। और सत्य बात बताऊं कृष्ण, सत्य बात बताऊं तो मैं कौरवों के पक्ष में इसलिए था इसी दृश्य को देखने के लिए, इसलिए मैं कौरवों के पक्ष में था, ये दृश्य को देखने के लिए, इस सुंदरता को देखने के लिए मैं कौरवों के पक्ष में था। तो इस प्रकार से पितामह बहुत सुंदर तरीके से ये वर्णन पूरा स्तुति का। तो भीष्म पितामह और उसके बाद स्मरण करते 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 लास्ट में उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर एकाग्र चित्र होकर, माघ का महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी की तिथि, आज की तिथि में पितामह भीष्म ने अपने शरीर को त्याग किया। सूद गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, कृष्ण एवं भगवती मनोवादृष्टि ब्रेति आत्मन्यात्मन वावेश्य सुंत श्वास उपारमत। सुध गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार भीष्म देव मनोवाग दृष्टि वृत्ति, चार चीजों का वर्णन करते हैं कि मन से और वाक अपने वाणी से और दृष्टि से और वृत्ति भी अपने वृत्ति अपने कार्यों से, इन चारों चीज को भगवान में लगाया और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में लीन कर दिया, और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया और सांस उनकी रुक गई। तो इस प्रकार से पितामह भीष्म ने अपने शरीर को त्याग किया। तो अंतिम कंक्लूजन प्रभुपाद जी इस प्रसंग में क्या लिखते हैं, प्रभुपाद जी को ये जो श्लोक मैंने बोला उस श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा हुआ है, उस तात्पर्य को हम पढ़ के खत्म कर देते हैं। तो भीष्म तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भीष्म देव द्वारा, ये भीष्म देव की मृत्यु का आज का तिरुभाव की तिथि में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं वो सुनिए। भीष्म देव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था यह समाधि अवस्था है, निर्विकल्प समाधि अवस्था कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों में स्मरण करके लगा दिया। यम यम आप स्मरण भावन त्यजितन्य क्लेवरम अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम, बड़ बड़ी व्याख्या है। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान का दर्शन करते, और इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हो गए,
और यही सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है कि कृष्ण में हमारी मति लग जाए और भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके, अभी प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे कि भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके अभ्यास करके हर किसी के लिए यह अवस्था प्राप्त करना संभव है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये अवस्था हमको भी प्राप्त हो सकती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं और कैसे हो सकती है तो यहाँ पे लिखते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस जो नौ विधियां हैं, इन नौ विधियों को प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इन नौ विधियों को अगर कोई इसमें से किसी एक विधि का भी पालन करते हुए, इनमें से किसी एक का जो एक जो कि सभी वांछित फलों को प्राप्त देने में समर्थ है, लेकिन एक दक्ष भगवत भक्त के शरणागत होकर उनके अनुगत्य में रहकर इन विधियों का पालन करेगा तो निश्चित रूप से भीष्म पितामह की जो स्थिति आज मृत्यु के समय हुई उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसको एक भगवत भक्त, दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शक में निरंतर अभ्यास करना उसको आवश्यक है। इसलिए गुरु वैष्णव उनके शरणा होना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इनमें प्रथम जो चरण है श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्म देव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, जो अंत में भीष्म देव की जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है उसके लिए भगवद गीता और फिर भागवत का श्रवण करना अति आवश्यक है। श्रवण करना हमें भी मृत्यु के समय भीष्म देव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है अगर हम गीता और भागवत को श्रवण करेंगे तो, कथाओं को श्रवण करेंगे तो प्राप्त हो सकती है। भले ही साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित ना हो, हम कह सकते हैं ना हम तो जीवन भर गीता और भागवत को पढ़े सुने लेकिन कृष्ण तो उपस्थित नहीं, हमने कई भक्तों के जीवन में देखा है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे इस बात को भी क्लियर करते हैं कि भले ही साक्षात कृष्ण सामने उपस्थित ना हो मृत्यु के समय, लेकिन भगवद गीता और भागवत का जो शब्द है ना वह कृष्ण से अभिन्न है। इसका जो श्रवण करते कथा का ना कृष्ण से अभिन्न है, जो गीता और भागवत का जो शब्द है ना कृष्ण से अभिन्न है, इसका श्रवण करते हुए हम करते हैं तो साक्षात कृष्ण की संगति को प्राप्त करते हैं। एक प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं तो इस प्रकार से इस अवस्था का लाभ उठा सकता है प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्म देव की तरह मरता है वह पूर्णता को प्राप्त होता करता है और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य अथवा पशु में यही अंतर है, यही मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से, यह जो मनुष्य जीवन है विशिष्ट रूप से भीष्म देव जैसी मृत्यु प्राप्त करने के लिए है। गधे की तरह मरने की तरह नहीं है ये मनुष्य जीवन। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर भीष्म देव की तरह मृत्यु प्राप्त करने के लिए यह जीवन है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर जो मृत्यु पितामह भीष्म का आज का तिरुभाव तिथि और ऐसा प्रसंग जो कि हृदय को द्रवित करने वाला प्रसंग, कृष्ण को देखते हुए अपने शरीर को त्यागे, उस समय शरीर को त्याग दिए और शरीर को त्यागने के पश्चात जो सारे द्रव्य युधिष्ठिर महाराज लेकर आए थे और उनकी अंत्येष्टि क्रिया की गई और अंत्येष्टि क्रिया करते जब भी उनका अंत्येष्टि क्रिया के समय जब उनको अग्नि दिया गया तो उस समय सारे देवता आकाश में प्रकट हो गए और बहुत सुंदर पुष्पों की वर्षा किए, दुंदुभिया बजाने लगे और इस प्रकार से पितामह भीष्म का जो अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुआ और उसके बाद उनके अस्थियों का विसर्जन करने के लिए युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र, विदुर, सारे पांडवगण मिलके उनके अस्थियों को विसर्जन करने के लिए गंगा जी के पास ले गए और गंगा जी कौन है, भीष्म पितामह की माँ है। आज भीष्म पितामह अपने माँ के गोद में जा रहे हैं वापस। तो उस समय जब अस्थियों को विसर्जन किया गया गंगा जी में तो उस समय महाभारत में वर्णन है कि गंगा माता प्रकट हो गई वहां पे और प्रकट होकर बहुत सुंदर उपदेश दिया है पांडवों को। तो इस प्रकार से पितामह भीष्म का जो आज उनका तिरुभाव तिथि है तो उनका स्मरण करें, जिस प्रकार से उनकी जो मति कृष्ण में लगी है लगी और उन अंत समय में कृष्ण का जो स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागा तो इसका एक बूंद मात्र भी हमारे अंदर आए ताकि हम भी कृष्ण के चरणों में अपने मति को लगा पाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पितामह भीष्म देव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।